તારીખ 8/3/1996 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મહાવીરજીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 180 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
શ્રીમદજી યા કિસી જ્ઞાની કે સ્ટેચ્યુ કો વંદન કરે યા અર્ગ ચઢાએ યા કુછ ભી અપને उनके प्रति के कुछ भावों को व्यक्त करने के लिए उनकी क्रिया करें. उस समय आज का प्रवचन नहीं करके उसी विषय में ही विशेष स्पष्टीकरण करें. तो इस विषय में बात वो है, जिस ज्ञानियों के प्रति भक्ति है, इस ज्ञानियों की चरण हमारे मस्तक पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. उस ज्ञानियों के प्रति हमारी भक्ति होती है, इसके चरण हमारे माथे पर हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे. तो वहां तो कोई इनकी स्टेचू भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके प्रति पूज्य भाव व्यक्त करने का एक नियमित मात्र है. तो भक्ति के जो भी नियमित हैं, उस निमित्त से हमारे भक्ति भाव आविर्भूत होते हैं, तो हमारा मतलब है हमारे भक्ति भाव को आविर्भूत करना, उतना ही हमारा मतलब है. इससे ज्यादा तो इसमें मतलब नहीं है. तो ऐसा बोला जाता है कि जिस जुम्मे को वो स्पर्श करते हैं उनके चले भूमि में धन्य है, जिस घर को जिस आवास को जिस आश्रम को जहां बना दे वो विराजते हैं विचारते हैं. सभी को हम धन्य मानते कि नहीं मानते. आदमी इनकी स्टेचू की क्या बात करें, गुरुदेव जिस आश्रम पर विराजते थे वहां जाके वंदना भी करते हैं कि नहीं करते हैं. हम क्या करते थे, तो जो बैठे ज्ञानी थे वो भी करते थे. जब ज्ञानी अपने उपकारी ज्ञानी गुरु के इस प्रकार के जो भी स्मरणचिन्ह थे, ये तो एक स्मरण चिन्ह है. स्टेचू तो बिल्कुल उनकी प्रतिकृति है, आसन वगैरह में प्रतिकृति नहीं है, फिर भी स्मरण आता है इसका. इसको बिल्कुल मनना भी करते कि नहीं करते, क्या हमारे भक्त भाव विलासित होते हैं. देखो निर्माण भूमि में क्या होता है, सुबह शिखर आदि निर्माण भूमि है, चरण चिन्ह स्थापित करते हैं. उनको भगवान की प्रतिमा जी भी मिली है, जो तीर्थंकर वहां से निर्वाण पद को पधारे. हमारा व्यवहार तो सिर्फ चरण चिन्ह लगाने का होता है, वहां चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, चरण चिन्ह की तो स्थापना भी करते हैं और अर्घ भी चढ़ाते हैं, वहां बैठकर पूजा भी करते हैं, करते भी नहीं करते यात्रा करते हैं. तो मतलब क्रिया का नहीं है, मतलब भावों का है. जिस क्रिया के माध्यम से हमारे भाव इनके प्रति अधिक उल्लासित हुए, भक्तिवान हुए, एक हमारे दर्शन गुण को अनुभव करने का कारण बनता है. मुमुक्षु को दर्शनों का अनुभव जो परिणाम से घटे, जो परिणाम से कम हुए, और परिणाम करने में हमें जो आपत्ति होनी चाहिए, किस प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए, वो नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए ज्ञानी भी डरते हैं और मनुष्य को तो करने में कोई शंका या कोई एक प्रकार की हिचकिचाहट होने नहीं चाहिए। एक एक प्रश्न को दे पहले भाई साहब का प्रश्न को दे ऐसा है हाँ, जो क्रिया है वो तो जड़ की क्रिया है और भाव है वो जीव के परिणाम है। अब देखिए कि भगवान का जीवन के परमात्मा का दर्शन करते हैं तो हमारा प्रशस्त राग बढ़ता है या दर्शन में भी साक्षात करता है कि नहीं करता है। परिणाम तो चारित्र के भी होते हैं और दर्शन के भी होते हैं, दोनों के परिणाम होते हैं। तो चारित्र में प्रशस्त राग होता है वो बात अवश्य है और वो स्थूल ज्ञान से इसका अनुमान भी किया जाता है, लेकिन दर्शनों के परिणाम तो सूक्ष्म है। जो परमात्मा जो ज्ञानी दर्शन में भीत हुए उनके प्रति बहुमान के जो परिणाम है वो दर्शनों को काटेगा तो नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा? प्रशस्तराग अवश्य साक्षात होता है उसकी मानी है, लेकिन हम अकेले चारित्रमों के परिणाम का क्या देखते हैं? साथ में होने वाले ज्ञान के परिणाम को सुधान के परिणाम को क्या नहीं देखते हैं? तीनों को देखना चाहिए। तो तीनों को देखेंगे तो तीनों में क्या प्रकार होता है वो भी नजर आएगा, तो वो भी होता है। जो वितरागी हो प्रयोजन हो तो उनको उनको आगम में तो ज्ञानियों को अमान्य करना किया है, सर्वज वितराग को माना भी वो हितोपदेश है और ज्ञानी भी हितोपदेश होते हैं। ज्ञानी हित के उपदेश थोड़ी नहीं देते हैं, वो भी हित के उपदेश देते हैं और हित के उपदेश देते हैं इसलिए तो इनके प्रति बहुमान आता है, हमारे कल्याण में निमित्त करते हैं इसलिए तो इसके प्रति बहुमान आता है, उपकार बुद्धि होती है और इसलिए इसकी भक्ति होती है। आगे में ऐसा नहीं कहा है कि ज्ञानियों को मत मानिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। ग्रंथ बहुत सर्वस्थ है फिर भी वो बहुत उपदेशी है और उसने भी मां का अभाव किया है, दर्शन मां का सर्वथा अभाव किया है और चारित्र मां का आंशिक अभाव किया है। वैसे ज्ञानियों ने भी दर्शन मां का अभाव किया है और चारित्र मां का आंशिक अभाव किया है और इनके समुद्र का उपदेश जैसे आत्मकल्याण में विविधत्व धारण करता है, उनसे निगम गुरु का करता है, वैसे ज्ञानों का करता है, विविधत्व में तो कोई अंतर नहीं है। अंतर है तीनों की दशा में, लेकिन विविधत्व में तो कोई अंतर नहीं है। इनका उपदेश और इनका उपदेश आत्मकल्याण में तो निमित्त पड़ता ही है, तो हमारा मतलब तो विविधत्व से है, इसलिए उनको वो करने में कोई आपत्ति नहीं है।
तो वो सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और दूसरी बात आप
तत्व विचार ठीक है, तत्व विचार सिद्धित करना, तत्व विचार सिद्ध मत करें, मैंने तात्विक रूप से उनका स्वरूप समझे। तो इसलिए हमारा स्पष्टीकरण वो है कि उन्होंने दर्शन मोबा अभाव किया है, वो तत्व विचार में आता है कि नहीं आता है, उसने चारित्र मोबा आंशिक अभाव किया, वो तत्व विचार का विषय है कि नहीं है, तो यही तो स्पष्टीकरण में आता है। इसमें तत्व विचार का प्रधान है, स्वरूप पहचानने बिना चाहे सर्वज्ञ हो, स्वरूप पहचानने बिना इसकी भक्ति करने से कोई दर्शन मान नहीं बटेगा, अकेला चारित्र नहीं बनेगा, दर्शन मान कम नहीं बनेगा, सर्वज्ञता का स्वरूप जानना होगा। और हमारे दिगंबर संप्रदाय में भी जो मूल दिगंबर हैं और भगवान का स्वरूप तत्व विचार से नहीं जानते हैं और सिर्फ ओम संज्ञा से पूजा भक्ति करते हैं, उनका दर्शन नहीं करता है, उनका चारित्र में कषाय मंद होता है, दर्शन उसका नहीं करता है, तो उनको जो फायदा होना चाहिए वो फायदा उनका नहीं होता है। वो बात तो अवश्य है कि ज्ञान की प्रधानता होनी ही चाहिए और पहचान होनी ही चाहिए, देव गुरु शास्त्र के बिना पहचान भक्ति पूजा करने से कोई पारमार्थिक लाभ नहीं होता है, वो बात तो अवश्य नहीं है।
क्या
पहचान नहीं किया है, उसको पहचान नहीं किया है, वो बात नहीं है।
अभी जो है मैंने जो ज्ञान ये समझाया उस ज्ञान के प्रतिकूल करके आज पंच परमेश्वर के चक्कर है नमोस्तु वंदामी स्वामी आचार्य भगवतों ने जो परिपाटी रखी है करोड़ों के साथ करोड़ों के साथ ही फोटो है 8-2.5 साल में कोई फोटो चढ़ाते हैं, हाँ जीवानी को दूसरा भी चढ़ाते हैं लेकिन वो फोटो के फिर आचार्य उन्होंने बताया महादेव भगवान हमारे पूज्य है जिन दिन हमारे पूज्य है हमने सिद्धांत लगा दिया है कोई मूर्ता की सिद्धांत की अगर मालवाड़ी चढ़ाने लग जाए बिल्कुल गलत हो जाएगी, सिद्धांत है हमारे दृष्टि के लिए हमारे महान है आप इसके आगे लगाने लग जाओगे ये तो जबकि लेकिन सिद्धांत सर्वज्ञ का है लेकिन ये सुनने क्यों नहीं हो सकते हैं ये तो सारा मार्ग इंद्र का मार्ग हमें उन्नीत हो जाएगा अभी पंचकाल के अंत तक हमें वो मार्ग चलाना है आज इसे महान पुरुष तुम्हारे पाइए फेंक रहे हैं और आप रहेंगे इंजन अगर किसी भावना में बैठ के ऐसा कर देंगे तो डिब्बे खा जाएंगे
परिस्थिति है
यहाँ सिर्फ तस्वीर नहीं हो रहा है, समाधान भी दे रहे हैं। तो जिसको समाधान देना है कभी ऐसे गड्ढे पे आ जाएंगे, मैं सुनता हूँ जिनको आपत्ति हुई या तो पूछने के लिए या तो समाधान के लिए। लेकिन ये प्रश्न भी लाभ करते हैं, समाधान भी लाभ देते हैं, तो ये बात तो फिर हमको विचित्र भी लगती है। बात वो है कि मैं जो समाधान दूंगा तो मेरे अनुभव से दूंगा, मुझे जो होता है ये मेरे अनुभव में आता है। क्योंकि किसी भी ज्ञानी है, धर्मात्मा है, धर्म कुछ नहीं होता है, जो भी धर्म होता है वो कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ रूढ़ी से या अजमेर समस्या बाह्य त्याग को पूजने की परंपरा चलती है, रूढ़ी चलती है, और हम मानते हैं कि हम संयम को पूजते हैं। लेकिन अष्टपाणियों ने इसका निषेध किया है, न तो द्रव्यलिंग को भी असंयमी कहा है। क्या कहा है? द्रव्यलिंग को असंयमी कहा है। और अष्टपाणियों के दशम प्रारंभ की 28वीं गाथा में वो बात लिया है कि जो समय दृष्टि है वो कितने बहुमान करने योग्य है। अगर अष्टपाणी हो तो मुझे टीवी में मैं गाथा पढ़ के दिखाऊंगा। इसमें नहीं है, इसमें कोई अष्टपावर नहीं है। एक कुंभकुंड आचार्य का सूत्र है, आगम की बात है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत से ग्रंथों में ये बात इसलिए है कि दुनिया धीमा प्रकट हुआ हो, आत्मा की दक्षिण ज्ञान चारिश्राणी मोक्ष मार्ग में पवित्र दशा है, इसलिए धर्म हमेशा हमेशा पूजनीय ही होता है। धर्म अपूजनीय होता है वो बात कतई गले उतरने वाली नहीं है। तो हम धार्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो हमको एक धर्म का विशेष गौरव हो जाएगा, हमारी समझ के बाहर हो जाएगा। हम सिर्फ धर्म को ही समझेंगे तो हमारी पूजनीयता आए बिना रहेगी। तो हमें तो हमारा लाभ नुकसान को देखना है, हमको रोगी क्या चलेंगे वो भी देखना है। क्योंकि रोगी में तो अनेक प्रकार की विकृतियां काल क्रम से हर संप्रदाय में आती है, निर्गत संप्रदाय हो या कोई भी संप्रदाय हो, काल क्रम से उसमें विकृतियां आती रहती है। वो विकृतियां कब आई, किस प्रकार की आई, वो बात सब जानते नहीं है, और शायद लोगों में भी कम लोग बोलते हैं। तो हमें ये बात किस तरह से समझना चाहिए, एक समस्या है। तो इसलिए हमारे पास आगम भी है और हमारे पास हमारे परिणाम का अनुभव भी है। आगम और अनुभव दोनों का मिलान करें, अच्छी तरह मिलान करें, और फिर किसी बात को सम्मत करे या असम्मत करे, उस पर हमारा हित होता है या अहित होता है उसमें देखें। हमें विधि से कोई मतलब नहीं है कि क्या रिवाज चल रहा है, क्या परंपरा चल रही है, क्या कैसे चल रही है। तो उसमें तो अनेक विकृतियां कालक्रम से आ चुकी है, हमको तो मालूम नहीं है कब आई है, कौन सी आई है। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए और हमारे परिणाम को भी देखना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। बस इस पर से हम सही नतीजे पर पहुंचेंगे, वरना हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक बात का कोई स्पष्ट कर लेंगे, Thank you. पार वंदना दे क्यों और किसे। नमस्कार और वंदना भी क्यों और किसे, उसमें एक प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति का आधार है। स्वकीय निश्चय रूपों की शुद्धि निश्चय होने में और उसके आधारभूत पुरुषों की भक्ति के परिणाम उन व्यवहार ले रहे हैं। दूसरा आधार समाधि तंत्र पृष्ठचार, जो जिस गुण की प्राप्ति का इच्छुक होता है वह उस गुण से युक्त पुरुष को नमस्कार करता है। और इसका थोड़ा विवेचन है कि जिनमें गुण प्रगट है वह बहुमान भक्ति पूजा आराधना आदि से आत्मा के मोक्ष की भावना स्फुरायमान होती है तथा आत्मशुद्धि प्रकट होने का अवकाश बनता है। अतः प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी प्रकृति में योग्यता अनुसार निज गुण गुण प्रकट करने व प्रकृति को विशुद्ध करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में संलग्न होता है, जिनका आधारभूत स्वरूप सतगुरु सतशास्त्र सदगुरु व सत्पुरुष की पूरी भक्ति पूजा आराधना ही है। नमस्कार दो प्रकार के हैं, एक अभिप्राय रूप और एक दूसरा अभिप्राय अभिप्राय पूर्वक प्रवृत्ति रूप। उच्च पद में स्थित अपने से हिंद पद स्थित के गुण प्रशंसा अनुमोदना अभिप्राय रूप नमस्कार है तथा अनावी नमस्कार महामंत्र के स्मरण में गणगुरुदेव आदि द्वारा अपने से हिंद पद स्थित सर्व साधनों को अभिप्राय पूर्वक नमस्कार होता है। उसी भांति ऊपर में उद्धृत निरंतर श्लोक बढ़ते हुए भी अभिप्राय पूर्वक नमस्कार है। वातावरण के श्लोक में क्या बात है कि वहां लिखते हैं कि शुद्ध अशुद्ध की जो कल्पना वो मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है, सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। इस प्रकार परमात्मा के अतुल अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सुंदर दृष्टि स्वयं जानता है उसे हम वंदन करते हैं। अट्ठाईस नंबर का पेज पर है तो ना सम्यक दृष्टि के सुंदर बुद्धि वाले को वंदन किया है मां मंत्र के कलश में। वह सम्यक दृष्टि भी शुभ स्वरूप अनेक क्रिया विकल्प का सिद्ध करता नहीं, कारण के लिए उसे कार्य सिद्धि नहीं होती और कैसा है कि अचिंत्य शक्ति वचन गोचर नहीं जिसके ऐसा है और कैसा है कि देव माने परम पूज्य है वो समेसार कलश 144 स्थिति का पंडित राज मिल जाती है। अब पंचाशी का एक आधार है, निर्मल सम्यक दर्शन धारण किया जाता है वह गृहस्थ अवस्था विवरानों के लिए पूजने योग्य है और हमारे छह ढाला में प्रसिद्ध प्रसंग है दलित राम जी का कि लेशी सैन्य परस्पर नाच दे रही है। वो बात तो प्रसिद्ध रूप से कठिन लोग में भी आती है, उस समाज में इंद्र होता है वो भगवान की पूजा करता है, वही भगवान को जन्म के काल में वेश में सुंदर नहीं होता है। हाँ अब और भी मैं पढ़ता हूँ, कितने आगम के आधार में भी पढ़ वो बात आती है। तैतीस में गाथा है दशम भावों की, तैतीस नंबर की गाथा ले लीजिए। जीव विशुद्ध संवत्र को मैं इसका अर्थ बोलता हूँ, तैतीस गाथा का दशम भावों की तैतीस गाथा का। जीव विशुद्ध संवत्र को कल्याण की परंपरा से पाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन रत्न है वह सूर्य असुरों से भरे लोक में पूज्य है। कल्याण श्रेणी सात वाणी जीव संकित शुद्ध में सुर असुर क्रिया लोकना संयत को रत्न पूजाए हैं। वो बुन गठक पढ़ने योग्य है थोड़ा, वो अष्टभाव होने उसको दर्शन पावर की तैतीस नंबर की गाथा ले लो। पहला दर्शन पावर है उसके तैतीस नंबर की गाथा है। इस छोटी सी पुस्तिका पुस्तिका में इस विषय पर करीब 175 आगम के आधार दिए गए हैं और 55 आगमों से वो आधार दिए गए हैं, 100 आगम के आधार नहीं दिए गए हैं। कल्याण परंपरा लहंती जीवा, कल्याण परंपरा लहंती जीवा विशुद्ध संगठन, विशुद्ध संगत्व को प्राप्त करने वाला कल्याण की परंपरा को प्राप्त करता है। संवर्धन संवर्धन अभ्येद क्या शब्द लिखा है, अर्घ की मारामारी है ना आजकल, हाँ संवर्धन संवर्धन अभ्येदी सुरासुर में लोक में सूर और असुर है वो अर्घ्य, इसका संस्कृत क्या होता है अर्घ्य अभ्येदी देने अर्घ्य वो अर्घ करते हैं उसको, ये कुंड कुंड आचार्य लिखते हैं समय दर्शन के विषय में। तो ये आगम के आधार बहुत है इस विषय में, वो नीत हो उसे कौन मंदे, गोड़ बिना प्रगट मुनि मंदी श्रावक भी नहीं, मुनि श्रावक का तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है, इसलिए इनको भारत में वही वंदनीय योग्य है। यही दर्शन पावर के 27वीं गाथा है, ये भी तुम गाथा के हैं। और एक भी 85वीं काल के विषय में गाथा है, कुछ नंबर जो अपने आत्मा में लीन है उसके ऊपर कार्तिक ने पूछा संगत कुमार प्रधान सहकुमार देवेंद्र नरेंद्र वंदितो भवति, संगत कुमार प्रधान सहकुमार मंगल पुरुष देवेंद्र नरेंद्र वंदितो भवति, देवेंद्र सौधर्मेंद्र आ गया है, देवेंद्र में कौन है सौधर्मेंद्र भी ले लेना वो खुद ही समय दृष्टि है एकालकालिक व्यवसाय समय दृष्टि है, नरेंद्र चक्रवर्ती आ गया है नरेंद्र में कौन लेना चक्रवर्ती लेना, तैयारी समय दृष्टि न रहा वंदित है नमस्करणीय पूजनीय भगवती। कार्तिक अनुपेक्षा की टीका गाथा 326 पृष्ठ 233 में से उदाहरण किया है ये विषय को। और 85 का ये गाथा 62 है। उल्लेखनीय है कि प्रचलित रूढ़िवश कई लोग जल चंदन आदि कष्ट द्रव्यों से पूजा करना ही धर्म पूजा मानते हैं, किंतु यथार्थ केवल धर्म पूजा कर रहा है। पूजा विधि के पर्यायवाची शब्द ये हैं, अधर्म में धार्मिक संस्कार, इज्जा में दान, कर्तव्य में यज्ञ, पूजा में आदर सम्मान श्रद्धांजलि आराधना, महर में आहुति, मख में यज्ञ विषय कृत्य, यज्ञ में पूजा का कार्य, याद मन यज्ञ, सपरिया में अर्चना सेवा परिचर्या पूजा सम्मान, ये बात लिए हैं महापुराण पेज 67 पेज 123। आगम में धर्म पूजा के कई भेद बताए हैं, अभिषेक करना, नैवेद्य आदि चढ़ाना, दिन प्रति प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना, तीनों सिद्धियों में उपासना करना, सम्मुख खरीदना, वचनों द्वारा स्मरण कीर्तन आदि करना, वगैरह देखे महापुराण गाथा 38-27-33 पर भगवती आराधना 47-159-21 ये सब आधार आगम के पूजा के विषय में यथार्थ समझ करने के लिए दिए गए हैं। और भी जो है
किसी भी दिन को जो संकट होता है तो उसकी शुद्धि प्रकट होती है, और उस शुद्धि को अनुसार प्रति हो, पंचम अनुसार प्रति हो, सातवां अनुसार प्रति हो और अनंत परमात्माओं को शुद्धि की बांगी बिल्कुल होता है। अब उसमें बांगी को शुद्धि को इंद्र भी देते हैं, जो सब समय शुद्धि समय शक्ति के प्रकृति हो उसको इंद्र क्यों देते हैं कि उनको उस समय शुद्धि प्रकट नहीं हो रही थी, तो वो तो अपने परिणति में संदेश होता है, परिणति में है उस शुद्धि को वो देखता है। मुनिराज उस शुद्धि को क्यों मुनिराज का एक अनुसार में स्वरूप योग में है इसलिए जज रहे हैं, अगर मुनिराज श्रेणी में कट जाएंगे तो कभी नहीं जजेंगे और अनंत परमात्मा भी नहीं जजेंगे, लेकिन वो शुद्धि प्रकट शुद्धि है असंख्या समय के लिए समय की रहते वो तो वंदनीय है, लेकिन जो परिणति में समय की चल रहा है उसको इंद्र कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो क्यों बांगी एक पर की बोला गर्मी शांति दिखाइए, एक पर की हमने देख लिए बांगी भी चिकित्सा है, उस बांगी के भरोसे एक पर की भरोसे हमने क्या होता दिया और बोला चीनी का नहीं लिया तो संज्ञाएं होने वाली है, एक का बिल्कुल तो मिठास में कोई भर नहीं है लेकिन बोला नहीं लिया तो पर की कोई लेके बैठ गए तो जगह है तो जगह गहरी शादी की सारी बड़ा शुरू की जाएगी। हाँ शुद्धि की शुद्धि बना है इंद्र जलो भगवान की लाल जलो वो ठीक है, लेकिन ये परिणति वाली बात है
वो अलग प्रश्न है, वो अलग प्रश्न है। भावना की उत्कृष्टता आगम देवों को नहीं मानती, देखिए बांग्ला की उत्कृष्टता आगम नियम को नहीं मानती, तो छोड़कर वे सभी जीवों का मोक्ष क्यों चाहते हैं, कितने समय में कितने भी मोक्ष जाएंगे ये उनमें पता तो होता ही नहीं है। तो कहने वाले का मतलब क्या है कि भावना अलग चीज होती है, वस्तु स्थिति और सिद्धांत अलग चीज होते हैं। तीर्थों का प्रकृति कब बदलती है कि तीर्थों का द्रव्य जिस चीज को होता है वो उसको भावना आती है, के सभी जीवों को मैं इस शासन में ले आया हूं। तो ये तो वस्तु स्थिति के बारे में बात है, ऐसे वस्तु स्थिति नहीं है कि जगत के सभी जीव जन शासन में आ जाए और सभी की मुक्ति सिद्धांत को वो निर्दान तो थे, वो बात तो नहीं थी, वो तो सिद्धांत के जानने वाले थे। फिर भी उनको जो भावना आई उसमें उनकी भावना में सिद्धांत का वस्तु स्थिति का उल्लंघन हुआ के नहीं हुआ कृपा बताइए, तभी तो चिन्ह प्रकृति प्रकृति बनती है और तभी प्रकृति के लोगों में दूसरे जीवों का कल्याण होने का अवसर मौका होता है। तो ये भावना नहीं देखते कि जगत के सारे देव से भावना क्यों करनी चाहिए, उनसे भावना को सिद्धांत टूट जाता है, जो भावना इस तरह से ये जो भावना होती है ये नैसर्गिक होती है, कुदरती होती है और जो कुदरती होती है उसको अमान्य करने के सिद्धांत के छल पर करके हमने सिद्धांत सिद्धांत को स्थानीय है, इसका संग्रहण करना या न करना हमारे ही प्रदेश को देख करके हमें सब विचार करना है। इन बातों में कई प्रकार की बातें हैं, एक प्रकार की बात नहीं है इसमें, इसलिए कुछ भी करना या नहीं करना है हमें हमारे परिणाम को देख करके करना है। ये भी बात है, आगामी हमारे तो इस पुस्तिका में 175 करीब आरम्भ आधार दिए हैं और 55 आरम्भ से ये आधार दिए हैं कि इसमें दृष्टि क्यों बदलनी है, क्यों पूजनीय है, इसके बड़े बड़े आचार्यों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं है, ये आनंद ज्ञानियों के लिखे हुए नहीं है, आचार्यों के मुनियों के भागवत संतों के लिखे हुए हैं। तो आपने जैसे पढ़ने के कोई शंका है आशंका हो तो उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी बात नहीं है, समृद्ध दर्शन को जो होता है उसका पता उत्कृष्ट मनुष्य को जो होता है और जिसमें ज्ञान योग को भी होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान गोचर है, ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म होता है कि भी इसका पता चल जाता है, समय बिना होता नहीं है, स्वयं को भी होता है और दूसरे को दूसरे ज्ञानियों को होता है और उत्कृष्ट रूप से होता है उसको होता है और टाइम तो यानी कि पहचान करने का प्रकरण ही नहीं चलता, जब पहचान बोल नहीं हाँ वो बात सही है। अब प्रश्न तो विषय तो बदलता जाता है, यदि जब आप चर्चा में बैठते हैं तो कोई भी विषय को हम कि समृद्ध दृष्टि किसी भी बाह्य विषय पहचाना नहीं जाता, इसलिए कि समृद्ध दृष्टि चारों गतियों में पैदा होती है, साथ ही मन की नारकी को भी समृद्ध दर्शन होता है और एक कुंभमंडप को भी समृद्ध दर्शन होता है। नियम तो अगर बाह्य चीज होता तो सभी को होना चाहिए क्योंकि इसमें तो अत्यवास्तव और वास्तव दोष नियम होना चाहिए, इसलिए कोई बाह्य चीज नहीं होता, सिर्फ और मुझे अंतरंग परिणति से पहचाना जाता है, ये एकमात्र अंतर्ग्नि का हमारे पास आधार है, उतना ही है, इससे ज्यादा कोई आधार नहीं है। तो अंतरंग परिणत अब यह प्रश्न हो सकता है आपका कि अंतरंग परिणति कैसी बोले, कैसी नहीं बोले, कैसे समझे जाए, तो भगत ने पहचान नहीं था एक ही मात्र प्रोसेस है, एक ही मात्र प्रक्रिया है, चाहे वो घर पदार्थ हो चाहे कोई व्यक्ति हो। परिचय से पहचान होते हुए बिना परिचय किसी चीज के या किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। हमारे विद्यार्थियों का काम है स्वयं जोड़ खुशी और मानस जोड़ खुशी, स्वयं को पहचानना है तो उसको कसौटी पे घसो, और आदमी को व्यक्ति को पहचानना है तो उसके संग में रखो। एक मात्र पहचान करने की प्रक्रिया है, दूसरे को प्रक्रिया नहीं। तो अगर हमको आभास हुआ या कोई आधार आया या कोई अनुमान लगा तो निरंतर किसी में दृष्टि हो सकता है, शायद हम नहीं पक्का नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दम है उसमें ऐसा कमी लगे तो उनके परिचय भी चलेगा ना, परिचय से पहचान हो सकते हैं। दूसरा कोई इलाजे नहीं है उसका, कोई रास्ता नहीं है दूसरा।
आप युद्ध के मैदान में परिचय करने के जा रहे हैं क्या? तो आज का समय समाप्त हो रहा है, अगली चर्चा रात्रि को करेंगे, ठीक है? नमस्कार। अभी सभी से निवेदन है कितना एक मिनट के लिए शांत बना रहे हैं। अभी अपना ये जो आज का सवेरे का प्रवचन होना था उसकी जगह पर अपने सभी भाइयों की शंका समाधान हुई है, और उसी शंका समाधान को मद्देनजर रखकर के ये बात रखी गई थी, और सभी भाइयों को संयमी बननी है अथवा नहीं, इसी के समाधान हेतु से यह पुस्तक अंतर विनोदिया लिखी गई है, जिसमें 55 ग्रंथों में से जो कि भावलिंगी आचार्यों में लिखे हुए ग्रंथ हैं, 55 ग्रंथों में से 175 आधार लेकर के ये पुस्तक लिखी गई है। जो भी भाई इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहे भावनगर
समूह विष्णु की हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, पर्व के दिनों में हम समूह विष्णु की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, समूह दर्शन की भी करते हैं, समूह ज्ञान की भी करते हैं, समूह चारित्र की भी करते हैं, तीनों के अलग अलग भी करते हैं और रत्नत्रय के एक साथ भी करते हैं। चारों प्रकार की पूजा है हमारे यहां, चारों प्रकार की पूजा है, समूह विष्णु की भी पूजा है, समूह ज्ञान की भी पूजा है, समूह चारित्र की भी पूजा है। तो फिर समूह दृष्टि को अलग चढ़ाने में क्या विरुद्धता हो सकती है? समूह क्या समूह दर्शन सम्यक दृष्टि को नहीं होता है? अगर हो तो सम्यक दर्शन की और सम्यक दृष्टि की अष्टद्रव्य से पूजा करने में क्या अंतर है? जबकि सम्यक दर्शन बिना सम्यक दृष्टि कहीं और जगह तो पाया नहीं जाता। सम्यक दर्शन का ध्येय तो सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन की पूजा तो करते हैं और सम्यक दृष्टि की पूजा करने में हमें तकलीफ होती है मानसिक, तो उसमें विरुद्धता परस्पर आती है। वो हमारे ध्यान में नहीं रहती कि क्या विरुद्धता हम कर रहे हैं, किस प्रकार की विरुद्धता कर रहे हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं रहती। तो सम्यक दृष्टि है वो तो सम्यक दर्शन खुद एक व्यक्ति का रूप धारण करके आया, हम उसको कहने लगे कि नहीं तुम अकेला आओ तो हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं। सम्यक दर्शन तो हम इधर इतने बैठे हैं इसमें किसी को भी पूछे कि सम्यक दर्शन आए तो अंगीकार करोगे, तो हमारे में से एक भी तो ना नहीं देंगे, देंगे कोई है। लेकिन सम्यक दृष्टि की बात आएगी तो एलर्जी हो जाती है कि इसकी बात मत करो, ये एक समझ की विरुद्धता है। सम्यक दर्शन में और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही अभेद रहता है, उसको अकेला तो पाया जाता नहीं है कि वो उनकी पूजा करें, ऐसा अकेला तो सम्यक दर्शन कहीं पाया नहीं जाता। हाँ, तो सम्यक दृष्टि का यह स्वीकार होने से सम्यक दर्शन का यह स्वीकार हो जाता है, अपने आप हो जाता है। क्यों उसमें क्या आपत्ति है, कौन सी आपत्ति है उनको, उनको पत्नी के रूप में क्यों लेना। हमको लौकिक रूप में देखना है या पारमार्थिक रूप में देखना है। हमारी दृष्टि पारमार्थिक है या हमारी दृष्टि लौकिक है। नहीं, हम तो पारमार्थिक दृष्टि से ही पूजा करते हैं, लौकिक दृष्टि से हम तो पूजा कभी नहीं करेंगे। गुरुदेव को ये कहते थे, गुरुदेव को सम्यक दर्शन की कितनी महिमा थी, इन गुरुदेव के शब्द में मैं कहूं तो बड़ी आश्चर्य वाली बात हो जाएगी कि सम्यक दृष्टि बैल होता है, उस बैल का नाखून, खरे बोलते गुजराती में, अगर वो निष्ठा को स्पर्श करने चलते चलते तो निष्ठा भिन्न हो जाती है। गुरु अपने प्रवचन में कहते थे, वो इतने सम्यक दर्शन की महिमा गुरुदेव को थी, तो सम्यक दृष्टि की महिमा कितनी होनी चाहिए, पत्नी क्या कन्ज भी हो तो क्या है, वंदन करने योग्य है। तुम्हारे घर पर यह चर्चा चलती है, सुंदर वादों सुंदर में ऐसी चर्चा चलती है कि अगर गुरुदेव ऐसा कहे कि गद्दे को सम्यक दर्शन है तो इनको वंदन करेंगे, ये पूर्वा को सम्यक दर्शन है तो इनको वंदन करेंगे, पत्नी तो मनुष्य है तो रियन जो होगी। परमात्मा पंचकरण
हो रहा था, परमानंद रहा था, भाव भाई ने एक बात कही थी, अपन सुनू को नाचारी की प्रतिमा स्थापित करें। नाथुला जी, इंदौर वाले नाथुला जी ने
स्वामी जी ने कहा नाथुला जी को बुलाओ। नाथुला जी ने कहा था अगर अपने परंपरा डालते हैं तो किसी आचार्य की कृष्ण आचार्य की प्रार्थना करें उन्हें सुनी है तो फिर उस परंपरा बिगड़ती हुई पूरी बिगड़ जाएगी। परमानंद के समय कृष्ण आचार्य की भी प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। स्वामी जी ने वो मान किया
तो उसमें तो कोई दूसरा कारण है उसमें वो बात हम जानते हैं। उसमें कारण वर्तमान मुनियों का विशेष को लेकर के था तो इसलिए दूसरा कारण ही दूसरा है। उसमें दोष लगने का कोई कारण नहीं। मुनियों को प्रतिमा स्थापित करने का तो शास्त्र में भी आज्ञा है कर भी सकते हैं। आचार उपाध्याय साधु की प्रतिमा बराबर स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं वो तो शास्त्रोक्त है। फिर भी गुरुदेव नहीं कराते थे उसके पीछे कारण था कि वर्तमान में जो परिस्थिति है मुनियों की उसमें कई प्रकार के मामले खड़े होने का बहुत अवकाश है। अलग रह जाएंगे वो बात तो मानने में नहीं आते कि जो समूह दृष्टि को बहुमान करेगा वो देवगुरु शास्त्र का बहुमान नहीं करेगा वो बात अनुमान करने लायक नहीं है। ऐसा अनुमान तो हमें नहीं करना चाहिए। वो अधिक बहुमान करेगा वो नहीं मानेगा या उसको एक साइड में रख लेंगे ऐसी बात तो नहीं है। वो तो अधिक करेगा। पहले भगवान का मंदिर बनेगा बाद में कुछ बनेगा तो बनेगा ये बात है।
वर्तमान में देखने में आता है ना कि मंदिर में भगवान तो है नहीं केवल मान लो केवल एक वो है जी के आश्रम में है भगवान के लिए मंदिर बन गया उसमें भगवान नहीं है केवल भक्त है। भक्त के लिए भक्त पूज रहे ये सारी दिगंबर परंपरा हमने दूर साधा है ये बात है।
सभी आश्रमों में ऐसा नहीं है। कुछ आश्रमों में ऐसा है कुछ आश्रम में ऐसा नहीं है। तो क्या है कि विकृति तो हर संप्रदाय में हर परंपरा में आती है। दिगंबर संप्रदाय में विकृति नहीं आई है क्या? कितनी विकृतियां आई कुदे आज हरिमंदिर में आने लगे कि नहीं आने लगे। तो ये विकृतियां के लिए तो कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है अच्छी बात है। बस अपने को तो विकृति का स्वीकार नहीं करने का है उतनी बात रखना है। लेकिन मंदिर में आज विकृति आ गई इसलिए मंदिर ही नहीं बनाना वो बात तो बराबर नहीं है। विकृति का निषेध करो।
वो
तो जहाँ असंयम की बात चल रही है अष्टपहाड़ी द्रव्यलिंगी के लिए ही चली है और संयम दृष्टि के लिए नहीं चली है। वो तो ऊपर के अनुष्ठान के कारण से कहा है। इसकी चर्चा टोडेंद्र जी ने गोमत सार की टीका संविज्ञान चंद्रिका में किया है। संविज्ञान चंद्रिका में उन्होंने वहां तक लिखा टोडेंद्र साहब ने कि कोई जीव करण लब्धि में आता है तो उसको जीव कहने में आया है। क्या जिन संज्ञा दिया है तो खुद तो प्रश्नों पर लिखने वाले थे उन्होंने प्रश्न उठाया खुद ने टोडेंद्र जी साहब ने कि उसको जीव क्यों कहे। अभी तो सुनील प्रश्न हुआ ही नहीं फिर उसको जीव क्यों कहे ऐसा प्रश्न उठाया हमने तो पढ़ा ही सब तो उत्तर लिया खुद ने क्योंकि उन्होंने जीवित्व प्राप्त किया है इसलिए हम उसको जीव कहते हैं। क्या उत्तर दिया
जीवित्व को प्राप्त किया है कर्मबुद्धि में, इसलिए जिन कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि तो इससे भी आगे है। तो फिर प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि को तो एवृत्ति कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान में। क्योंकि भाई जी बात तो ऐसी है कि ऊपर के गुणस्थान वालों जितने पुरुषार्थ और वितरार्थता उतनी नहीं हुई है, उतना ही दर्शाने का हेतु है। एवृत्ति कहकर के हमें को अवगुण दर्शाने का हमारा प्रयोजन है नहीं।
हाँ,
तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि गिनाने के हेतु से ये नाम दिया है। और ऊपर के गुणस्थान जितनी वितरागता और पुरुषार्थ नहीं है उतना बताने का हमारा हेतु है, ऐसा स्पष्टीकरण दिया है प्रोडोमी के सामने। इसका अवगुण दिखाने का हमारा कोई हेतु नहीं है, ऐसा करके स्पष्टीकरण दिया है। तो आजकल हमारा टोन क्या हो जाता है, तो एवृत्ति है ऐसे ही भी है, जैसे कोई उसका अवगुण हम मुख्य करते हैं ऐसा टोन हो जाता है। तो वो भक्ति करने योग्य है जिसको जीवित्व की संज्ञा प्राप्त हुई हो, उसकी कोई एवृत्ति नहीं हो, उतनी सावधानी अगर हमें रखेंगे तो हमारे लाभ का कारण है। अगर उसकी जाने अनजाने में अभक्ति के परिणाम हो जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो दर्शन मिटाने का बाकी है। हमारा तो दर्शन में मिटाने पर जिसका दर्शन में मिटा है उसके प्रति हमारे परिणाम अवमानना के हो जाए या अभक्ति के हो जाए तो हमारा दर्शन में तीव्र हो जाएगा, नुकसान तो हमें हो जाएगा। इसलिए यही सावधानी रखने की बात है। तीसरी बात तो हमने एक दो दिन पहले जो चर्चा चली उसमें कही थी कि अगर इसके उसमें इसके मायने में ऐसा निमित्तत्व है कि दूसरे को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, मिथ्या दृष्टि के मायने से तो किसी को सम्यक दर्शन होने वाला है नहीं। ये नियमबद्ध बात है कि द्रव श्रुत उसको बोला जाता है कि जिसको भाव श्रुत प्रकट हुआ हो। भाव श्रुत वालों की वाणी को ही द्रव श्रुत कहते हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मुनिराज हो। तो ये द्रव श्रुत से जिसका कल्याण होता है, जिसको कल्याण होवे उसमें परमेश्वर बुद्धि आए बिना रीति नहीं। आप तो सम्यक दृष्टि की बात करते हैं लेकिन उनकी नजर कहां जाती है, उनकी नजर वहां तक जाती है कि जिस परमेश्वर से मेरा कल्याण होता है ठीक बराबर इसकी मायने से मेरा कल्याण हुआ, तो जिसको कल्याण हुआ उनको सम्यक दृष्टि भी नहीं कहेंगे, उसको गुरु भी नहीं कहेंगे, वो उसको देव कहेंगे। और वो बात रत्नकरण श्रावकाचार्य की 28वीं गाथा में स्वामी सुमनभद्र आचार्य ने किया कि हम उसको देव नहीं कहते हैं, गंधर्व देव उसको देव कहते हैं। वो 28वीं गाथा में क्यों कहा ऐसा, गंधर्व देव का नाम लेकर के क्यों कहा, कोई खुद कम समर्थ नहीं थे, पर वो एक समर्थ आचार्य थे। और गंधर्व देव भी समर्थ आचार्य होते हैं फिर भी गंधर्व देव का नाम दिया, मतलब क्या निकलता है, मतलब वो निकलता है कि जिसको उपकार होता है उनकी बुद्धि क्या होती है, उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि अरे मैं सारा संसार सिर गया, मेरा अनंत काल का दुख मिट जाएगा और अनंत काल के लिए मुझे भविष्य में अनंत सुख मिलेगा, तो इसके लिए जो भी वो कहेगा वो कम कहेगा क्या, असर रखेगा क्या। तो उस प्रकार की ये प्रैक्टिकल साइड का विषय है, उसको प्रैक्टिकल साइड से समझेंगे तो अपना हित होने का अवसर आएगा। और तर्क वितर्क में चले जाएंगे, रूढ़ि परंपरा में चले जाएंगे, उसको मुक्त करके हम हमारा नुकसान क्यों मान लें, क्योंकि परंपरा वाले तो बिगड़ने वाले हैं ही। टैगोर मर्जी ने तो साफ लिखा, वक्ताओं की योग्यता में लिखा, वक्ता के स्वरूप में लिखा कि कभी परंपरा चलाने के लिए शास्त्र वांछन मत करो,
और परंपरा चलाने के लिए जो शास्त्र स्वाध्याय और मंथन करता है वो वक्ता के योग्य नहीं है। उसमें निषेध क्या है रूढ़ि का और परंपरा का? हम परंपरा को मुख्य लेकर के परमार्थ को गौण कर दें तो बहुत बड़ी गुण हो जाएगी हमारी। परमार्थ को हमेशा मुख्य रखें और अपने को व्यक्तिगत लाभ नुकसान क्या होता है उसको मुख्य रखें। समाज को मुख्य करने से लोक संज्ञा की प्राप्ति हो जाती है और लोक संज्ञा है वो बड़ा पॉइजन है, इससे बड़ा जहर कोई नहीं है। सीमित जी ने तो उसको कालकूट जहर बोला है। लोक संज्ञा से कोई काम नहीं करना है। लोगों को ये होगा, लोगों को ये होगा, लोग ऐसा सोचेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग वो करेंगे, उसने अपने आत्मकल्याण छोड़ जाएगा। अपना ये तो
ऐसा है कि जो आप कह रहे हो सब मुक्ति जानते हैं कि सम्य दृष्टि की महिमा कोई कम नहीं, सम्य दृष्टि की भी महिमा कम नहीं। स्वामी जी के निमित्त से सब मुक्ति जानते हैं। आज तो स्वामी जी ने जिन दूरियों को चलाने में